यह डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट अपने पुराने नियम के इतिहास, साहित्य और धर्मशास्त्र पाठ्यक्रम में हैं। व्याख्यान 21 सैमसन के साथ न्यायाधीशों की पुस्तक, दो लेवियों की कहानी और फिर रूथ की पुस्तक को समाप्त करना। अबीमेलेक ठीक है, आइए न्यायाधीशों की पुस्तक के बारे में बात करें। पिछली बार हम जो बात कर रहे थे वह गिदोन के बारे में था जो मिद्यान से लड़ रहा था। गिदोन ने प्रभु की तलवार से मिद्यानियों को हराया था। गिदोन ने अपने मोलोटोव कॉकटेल लैंप को नीचे फेंक दिया था और चीजों में आग लगा दी थी, तुरही बजाई थी और मिद्यानियों के खिलाफ जीत हासिल की थी। गिदोन की बड़ी जीत के बाद क्या हुआ कि गिदोन का एक बेटा है और बेटे का नाम अबीमेलेक है। अब नाम सचमुच महत्वपूर्ण है। उसका नाम अबीमेलेक है। हिब्रू में अब का मतलब क्या होता है? अब्बा, पापा। तो अभी मेरे पिता हैं। मेलेक का अर्थ है राजा। मेरे पिता राजा हैं, उसके पिता कौन हैं? उनके पिता गिदोन थे। क्या उसके पिता राजा थे? नहीं, वह नहीं था। क्या न्यायियों के समय में इसराइल में कोई राजा थे? नहीं। तो क्या यह नाम सचमुच एक दिलचस्प नाम है? यह किताब से टकराता है, मेरे पिता राजा हैं लेकिन वह राजा नहीं थे, परंतु फिर भी उसका नाम अबीमेलेक है। जोथम की कहानी। अब क्या होता है कि अबीमेलेक सत्ता संभाल लेता है। वह बड़ा भाई है। वह अपने अन्य सभी भाई बहनों के साथ जो करता है वह यह है कि वह उन सभी को मार डालता है। मुझे नहीं पता 30, 40, 50 इनकी एक टन संख्या है। वह अपने भाइयों और बहनों को मार डालता है। होता यह है कि सबसे कम उम्र के लड़कों में से एक जोथम छिप जाता है और भाग जाता है। इसके बाद जोथम एक पहाड़ी पर चला जाता है और वह अपने भाई को एक कहानी सुनाने जा रहा है और यह न्यायाधीशों की पुस्तक के अध्याय 9 में है। वह यह कहानी सुनाने जा रहा है। मैं बस वर्णन करूंगा और दृष्टांत का एक सारांश दूंगा, लेकिन मूलतः वह ऊपर जाता है और वह यह कहानी कहता है। जंगल के वृक्ष अपने आप को राजा बनाने के लिए निकले, वैसे एक कल्पित कहानी क्या है? क्या बाइबल में दंतकथाएं हैं? एक कल्पित कहानी क्या है? आम तौर पर एक कल्पित कहानी एक जानवर के बात करने या एक पेड़ की तरह बात करने जैसी होती है। खैर, यहां जंगल के पेड़ खुद को राजा घोषित करने के लिए निकलते हैं और इसलिए वे जैतून के पेड़ के पास गए और उन्होंने जैतून के पेड़ से कहा, जैतून का पेड़, क्या तुम हमारे राजा बनोगे? तो हमें जैतून का तेल और ये सब अद्भुत वस्तुएं जो हम खाते हैं दे। जैतून जिन्हें हम पिज्जा पर रख सकते हैं और हम अपने राजा के लिए एक जैतून का पेड़ रखना पसंद करेंगे। और जैतून का पेड़ कहता है, मैं तुम्हारा राजा नहीं हो सकता। यदि मैं तुम्हारा राजा हूं तो वहां कोई जैतून नहीं है और वह अच्छा नहीं है। इसलिए वे बेल के पास जाते हैं और वे कहते हैं, अरे बेल, क्या तुम हमारे राजा बनोगे? अब जब बेल हमारी राजा है तो आप हर समय पार्टी कर सकते हैं, हर किसी के लिए शराब होगी। बेल कहती है, मैं तुम्हारा राजा नहीं हो सकता क्योंकि यदि मैं तुम्हारा राजा हूं तो मैं अंगूर नहीं उगा सकता जिससे मनुष्य का हृदय प्रसन्न हो। तो अंततः वे ब्रम्बल झाड़ी के पास जाते हैं। क्या आप लोग कभी टेक्सास गए हैं? ब्रैम्बल झाड़ी एक ऐसी झाड़ी है जिस पर पत्तियां नहीं होती हैं। यह सब कांटे और ऊंटकटारे हैं। जब आप उनके बीच से चलने की कोशिश करते हैं तो यह आपके पैरों को काट देता है। वे आम तौर पर घुटनों तक ऊंचे होते हैं। वे निचली बहुत कंटीली झाड़ियां हैं जिनमें लगभग कोई पत्तियां नहीं हैं। वे बस ये कांटे और ऊंटक तारे हैं। तो क्या होता है कि वे कंटीली झाड़ी के पास आते हैं और कहते हैं, कंटीली झाड़ी, क्या आप हमारे राजा होंगे? और कंटीली झाड़ी कहती है, मैं तुम्हारा राजा बनूंगा, आओ मेरी छाया में छुप जाओ। अब यह इतनी विडंबना क्यों है? कंटीली झाड़ी की कोई छाया नहीं होती। कंटीली झाड़ी किसके लिए अच्छी है? यह किसी भी काम के लिए अच्छा नहीं है। फिर भी उसका दावा है कि वह राजा बनने जा रहा है। इस कहानी के माध्यम से जोथम अबीमेलेक के बारे में क्या कहना चाह रहा है? क्या अबीमेलेक के राजा बनने की संभावना सबसे कम है? और फिर भी वह ऐसा दिखावा कर रहा है जैसे वह बड़ा राजा है, लेकिन वास्तव में उसकी संभावना सबसे कम है। जैतून का पेड़ खत्म हो गया है, बेल खत्म हो गई है, और यहां यह झाड़ीदार झाड़ी है। अब यह कांटेदार झाड़ी राजा बनने की कोशिश कर रही है। तो यह एक कहानी है। यह एक दंतकथा है जो योताम सुनाता है। यह एक कहानी है जो बाइबल में दर्ज है। इसलिए यदि आप लोगों को पागल करना चाहते हैं तो कहें, बाइबल में दंतकथाएं हैं, और लोग अव्यवस्थित हो जाएंगे क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि बाइबल इतिहास की बजाय एक कहानी है, लेकिन बाइबल में दंतकथाएं हैं। यह जोथम ने उन पेड़ों के बारे में बताया है जो इस झाड़ी को अपना राजा बनाते हैं। वैसे क्या यह व्यंग्यात्मक कहानी उसके बड़े भाई को नीचा दिखाने के लिए है? और इसलिए यह कहानी इसीलिए है। कांटेदार झाड़ी की कहानी सत्ता पर एक व्यंग्य है। मुझे लगता है कि हमने यह पहले भी कहा है, पैसा, सेक्स और शक्ति। हमने पिछली बार इस बारे में बात की थी। शक्ति वह है जो अबीमेलेक को मिलती है। वह अपने ही भाइयों को मार डालता है ताकि उसके पास शक्ति हो और वह अगला शासक बन सके। कई बार आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। बहुत दुख की बात है। यह एक दुखद कहानी है। यह गिदोन का अंत है। क्या आप देखते हैं कि गिदोन वास्तव में कितना अच्छा इंसान था? लेकिन क्या आप देखते हैं कि गिदोन के जाने के बाद उसके बेटे अपने परिवार में इस युद्ध में उतर जाते हैं और उसके परिवार को नष्ट कर देते हैं? अतः गिदोन का वंश नष्ट हो गया। अब राजत्व का पहला प्रयास अबीमेलेक है। कुछ लोग इसे प्रथम राजत्व प्रयास से जोड़ते हैं। राजसत्ता का एक असफल प्रयास यहां न्यायाधीशों की पुस्तक में पाया जाता है। न्यायाधीशों की पुस्तक में क्या है? इसराइल में कोई राजा नहीं है और हर कोई वही करता है जो उसकी दृष्टि में सही है। सही। जजों की किताब में उस तरह के छोटे राजत्व के पहले प्रयास में अबीमेलेक भाग गया। हालांकि यह असफल प्रयास था। यिप्तह, इस साथी यिप्तह के बारे में क्या? वह मूलतः एक चीज के लिए प्रसिद्ध हैं। वह गिलियडवासी है। वह वास्तव में समाज में अच्छी तरह से फिट नहीं बैठता था, इसलिए उनकी बात न मानने पर उन्हें बाहर कर दिया गया। उसकी मां वहां कुछ नाजायज था। क्या होता है? क्या ईश्वर कभी अपने अर्थ से बिल्कुल विपरीत बात कहता है? और अध्याय 10 पद 14, परमेश्वर यह कहता है, परंतु तुमने मुझे त्याग दिया है। वह इज़राइल के लोगों से बात कर रहे हैं। वह कहता है कि तुमने मुझे त्याग दिया है और दूसरे देवताओं की सेवा की है, इसलिए मैं अब तुम्हें नहीं बचाऊंगा। बचावकर्ता के रूप में भगवान की भूमिका, मैं अब तुम्हें नहीं बचाऊंगा। और तब परमेश्वर यह कहता है, जाओ और अपने चुने हुए देवताओं की दुहाई दो। जब आप मुसीबत में हो तो उन्हें आपको बचाने दें। क्या परमेश्वर अपने लोगों को यहां मूर्ति पूजा करने की आज्ञा दे रहा है? वह कहता है, अपने बनाए देवताओं के पास जाओ और उनकी दुहाई दो। क्या भगवान यहां मूर्ति पूजा का आदेश दे रहे हैं? क्या यह व्यंग्य है? क्या ईश्वर व्यंगात्मक है? वह कहता है, मैं अब तुम्हें नहीं बचाऊंगा क्योंकि तुम लोग इन मूर्तियों की पूजा कर रहे हो। ठीक है, मूर्तियों के पास जाओ, उन्हें तुम्हें बचाने दो, यह व्यंग्यात्मक है। वह उनसे कहना चाहता है कि अपनी मूर्तियों से छुटकारा पाओ और उसके पास वापस आओ, लेकिन वह यहाँ व्यंग्य का इस्तेमाल करते हैं और अपने मतलब के बिल्कुल विपरीत बात कहते हैं। क्या बाइबल में व्यंग्य है? दरअसल क्या भगवान व्यंग्य करते हैं? हाँ, वह करता है। आपको व्यंग्य से सचमुच सावधान रहना होगा। कई बार मैं व्यंग्य का प्रयोग करता हूँ। क्या व्यंग्य बहुत हानिकारक हो सकता है? मैं अपनी बेटी को कभी नहीं भूलूंगा जब वह छठी कक्षा में थी। वह 10-15 साल बाद मेरे पास वापस आई और उसने कहा, मुझे याद है जब आपने कहा था और मैंने कोई पागलपन भरी बात कही थी, लेकिन मैं व्यंग्य कर रहा था। उसे यह बात समझ में नहीं आई कि यह व्यंग्यात्मक था। उसने सोचा कि वास्तव में मैंने यही धारण किया था। तो मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि व्यंग्य से सावधान रहें, क्योंकि व्यंग्य उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है जो नहीं समझते हैं। लेकिन भगवान इसका उपयोग यहाँ करते हैं। तो वहाँ व्यंग्य के लिए एक जगह है और वहाँ व्यंग्य के लिए एक जगह नहीं है। एक्लेसियास्टेस या ऐसा ही कुछ लगता है ना? इसलिए संदर्भ अर्थ निर्धारित करता है। यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर का यह इरादा नहीं था कि वे मूर्ति पूजक बने। वैसे बात तो ये है, भगवान व्यंग्य का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं? व्यंग्य का क्या कार्य है? क्या व्यंग्य उन्हें डांटने का काम करता है? इसलिए वह उन्हें डांटने के लिए व्यंग्य का प्रयोग कर रहे हैं। आपको इसे संदर्भ से चुनना होगा। अब क्या होता है? यिप्तह बाहर चला जाता है। वह कहता है, ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए लड़ूंगा। मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा। मैं जज बनूंगा। ईश्वर उसे न्यायाधीश बनाता है। फिर यह कहता है, यहोवा की आत्मा यिप्तह पर उतरी। यह अध्याय 11:2 है। वह गिलाद को पार कर गया और यिप्तह ने यहोवा की मन्नत मानी, और यही वह प्रतिज्ञा है जिसके लिए यिप्तह सबसे प्रसिद्ध है, उसकी प्रतिज्ञा। यिप्तह ने यहोवा से यह मन्नत मानी कि यदि तू अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं अम्मोनियों के पास से विजयी होकर लौटूंगा, तब जो कोई मुझसे मिलने के लिए मेरे घर के द्वार से निकलेगा वह यहोवा का हो जाएगा, और मैं उसे होमबलि करके चढ़ाऊंगा। वह अम्मोनियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए निकलता है। अम्मोनी यहाँ जॉर्डन में हैं। क्या होता है? वह घर आता है। जब वह घर आता है तो उससे मिलने कौन आता है? जब वह घर आते हैं तो उनकी बेटी उनसे मिलने के लिए बाहर आती है। तो अब यह प्रतिज्ञाओं के बारे में एक प्रश्न उठाता है। आपको भगवान के सामने शपथ लेने में सावधानी बरतनी होगी। इस पर सभोपदेशक कुछ दिलचस्प बातें कहते हैं। मुझे बस इसे पढ़ने दो। सभोपदेशक 5, वैसे सभोपदेशक की पुस्तक में महान ज्ञान है। इसमें यह कहा गया है, जब तुम परमेश्वर के भवन में जाओ तो अपने कदमों की रक्षा करो। उन मूर्खों का बलिदान चढ़ाने के बजाय सुनने के लिए पास जाओ जो नहीं जानते कि वे गलत करते हैं। परमेश्वर के सामने कुछ भी बोलने में उतावली न करना और न हृदय में उतावली करना। परमेश्वर स्वर्ग में है और तुम पृथ्वी पर हो, इसलिए तुम्हारे शब्द कम होने चाहिए। श्लोक 4 पर जाएं। जब तुम परमेश्वर से कोई प्रतिज्ञा करो तो उसे पूरा करने में देरी मत करो। उसे मूर्खों में कोई आनंद नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। मन्नत मानकर उसे पूरा न करने से बेहतर है कि मन्नत न खाई जाए, उसका क्या कहना है? जब तुम परमेश्वर के घर में जाओ तो तुम्हारे शब्द कम हो। मुझे कभी कभी उन युवा रैलियों में से कुछ के बारे में चिंता होती है जो उन्होंने तब की थी जब मैं छोटा था। लोग वहां आकर कहते थे, क्या आप प्रतिदिन पवित्र शास्त्र के 3 अध्याय पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं? आप में से कितने लोग ऐसा करेंगे? सब लोग खड़े हो जाओ। वे पढ़ने और ऐसी ही अन्य चीजों का प्रण लेते हैं। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि ऐसा करने में बहुत सावधान रहें। भगवान मूर्खों से प्रसन्न नहीं होते। बस भगवान के सामने प्रतिज्ञा करने में सावधान रहें। यिप्तह यह प्रतिज्ञा करता है, जो कोई मेरे घर के द्वार से निकलेगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या यिप्तह ने अपनी बेटी को जला दिया? क्या वह उसे बलि के रूप में जलाता है? मुझे बस इतना कहने दीजिए, संभवतः पुराने नियम के 80-90% विद्वानों का कहना है कि यिप्तह ने अपनी बेटी को जला दिया। अब उसे क्या करना चाहिए? मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि उसने उसे जलाया है। लेकिन इसे आपके दिमाग में क्या रखना चाहिए? हिल्डेब्रांट इस कक्षा के प्रोफेसर हैं, उन्होंने इसे सही पाया है। नहीं नहीं, हिल्डेब्रांट संभवतः इस मामले में गलत हैं। लेकिन क्या वह अब भी सोचता है कि यह सही है? मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि मैं जानता हूं कि मेरे अधिकांश मित्र जो पुराने नियम के विद्वान हैं इस बिंदु पर मुझसे असहमत होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यिप्तह ने अपनी बेटी को नहीं जलाया। मुझे लगता है उसने ऐसा नहीं किया। यह अल्पसंख्यक पद है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वह यह है कि क्या मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैं कभी कभी गलत भी हो सकता हूं? हाँ, और मैं यहां गलत हो सकता हूं। मैं आपको केवल यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यह अल्पसंख्यक स्थिति है। हो सकता है उसने उसे जला दिया हो। लेकिन यहां वे कारण हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि उसने ऐसा नहीं किया। तो सबसे पहले, जब उसे बताया गया कि जब यिप्तह मिस्पा में अपने घर लौटा तो उसे मिलने के लिए किसे बाहर आना चाहिए, लेकिन उसकी बेटी डफ की धुन पर नाच रही थी। उसके पिता युद्ध से घर आए हैं। यह अफगानिस्तान से वापस आ रहे एक सैन्यकर्मी की तरह है। उनके बच्चे पापा का स्वागत करने घर आते हैं। फिर यह कहता है, वह उसकी इकलौती संतान थी। यह बात क्यों सामने आती है कि वह उसकी एकमात्र संतान थी? जरा गौर करें कि वह उनकी इकलौती संतान थी। उसके अलावा उसका न तो कोई बेटा था और न ही बेटी, तो यह इसे वास्तव में स्पष्ट बनाता है। मेरे पिता, उसने उत्तर दिया, आपने अपना वचन प्रभु को दे दिया है। जैसा तुमने वादा किया था वैसा ही मेरे साथ करो। अब प्रभु ने तुम्हारे शत्रुओं से बदला ले लिया है। वह कहती है, ठीक है, मैं भी इसमें शामिल हूँ पिताजी। वह कहती हैं, मुझे 2 महीने दीजिए। उसकी अपने पापा से एक रिक्वेस्ट है, मुझे पहाड़ों पर घूमने और अपने दोस्तों के साथ रोने के लिए 2 महीने का समय दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं जल जाने वाला हूँ। नहीं, मुझे अपने दोस्तों के साथ रोने के लिए 2 महीने पहाड़ों पर घूमने दो, क्योंकि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। अब यदि आप वेदी पर बलि के रूप में जल रहे होते तो क्या आप इस तथ्य के बारे में चिंतित होते कि आपने कभी शादी नहीं की? या फिर विवाह एक प्रकार से दूसरा स्थान ले लेगा? यदि आप आग में जलने वाले हैं तो क्या यह शादीशुदा होने से थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? लेकिन यहां ध्यान दें कि वह कहती है, क्योंकि मैं शायद कभी शादी नहीं कर पाऊंगी। तुम जा सकते हो। और वह 2 महीने तक पहाड़ों में चली गई। वह और लड़कियां पहाड़ियों पर शोक मनाते हैं। और क्यों? क्योंकि वह कभी शादी नहीं करेगी। 2 महीने में वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके साथ वैसा ही किया जैसा उसने कसम खाई थी। अगली पंक्ति क्या है? और वह कुंवारी थी और तुम कहते हो, एक मिनट रुको, उसने अभी अभी उसे जला दिया है। उस समय कौन यह बताता है कि वह कुंवारी है या नहीं? इस व्यक्ति ने अपनी बेटी को यज्ञ अग्नि में जला दिया। इसमें यह उल्लेख क्यों होगा और वह कुंवारी थी? क्या कुंवारी लड़कियां अधिक जलती हैं? क्या बात है? मुझे माफ करें, यदि उसने अभी अभी उसे जलाया है तो आपने उसे जलाने के ठीक बाद यह क्यों कहा कि वह कुंवारी है? हालांकि अगर कुछ और हुआ तो क्या यह संभव है कि वह जो कहता है कि वह अपने घर के दरवाजे से जो कुछ भी निकलेगा उसे चढ़ा देगा, कि इसे लेने के दो तरीके हैं? क्या इसे इस तरह पढ़ना संभव है? और के लिए इब्रानी शब्द का अनुवाद या भी किया जा सकता है। क्या और या के बीच कोई अंतर है? अगर आप इसे इस तरह से लेंगे तो क्या होगा? यदि तू अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं अम्मोनियों के पास से विजी होकर लौटूंगा तो जो कुछ मेरे मिलने के लिए मेरे घर के द्वार से निकलेगा वह यहोवा का हो जाएगा, अन्यथा मैं उसे बलि करके चढ़ाऊंगा। अब एनआईवी कहता है, यह प्रभु का होगा और मैं इसे बलिदान के रूप में अर्पित करूंगा। क्या यह कहने से भिन्न है कि मैं इसे प्रभु को समर्पित करूंगा या मैं इसे बलिदान के रूप में अर्पित करूंगा? इससे उसे अपनी बेटी को भगवान को समर्पित करने की अनुमति मिलती है। वैसे तो क्या यह महत्वपूर्ण है कि वह कुंवारी है, कि उसने कभी शादी नहीं की, कि वह भगवान को समर्पित है? इसका क्या मतलब है? क्या उसके कोई बच्चे होंगे? उसकी कभी कोई संतान नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि यिप्तह के कौन से वंशज होंगे? वह उनकी इकलौती बेटी है। वैसे प्राचीन दुनिया में कोई वंशज न होना क्या बड़ी बात थी? क्या आपकी पंक्ति उस बिंदु पर समाप्त हो गई? और इसीलिए वह रो रही है, वह रो रहा है क्योंकि उसकी लाइन खत्म हो गई है। वह उसके वंशज होने का आखिरी मौका है और अब यह कट गया है। वह प्रभु को समर्पित है। वह कभी शादी नहीं करेगी, वह कुंवारी है, उसकी कोई संतान नहीं होगी। समझ आया? मुझे लगता है यही हुआ है। उसने उसे प्रभु को समर्पित कर दिया। वैसे यदि आप संख्या 8 पर जाएं और पार्क सेंट चर्च में डॉक्टर ह्यूजेनबर्गर ने इसे बताया तो मुझे लगता है कि यह एक शानदार अवलोकन था। मैंने पहले कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे उनके चर्च में जाना अच्छा लगता है। जब भी मैं उनके चर्च में जाता हूं तो मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। उन्होंने इस चीज को संख्या 8.11 से बाहर निकाला, इसकी जांच करें। संख्या 8.11 में कहा गया है, हारून लेवियों को हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने उपस्थित करेगा। लेवियों को लहर की भेंट के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। क्या इसका मतलब यह है कि वह सभी लेवियों को मार डालेगा और उन्हें बलि के तौर पर यहोवा के सामने लहराएगा? नहीं, इसका मतलब है कि वह उन्हें बलिदान के रूप में भगवान को समर्पित करता है। क्या किसी को रोमियो 12.1 याद है? एक जीवित बलिदान के रूप में पवित्र, भगवान को स्वीकार्य, जो आपकी उचित सेवा है। हमें स्वयं को भी एक बलिदान के रूप में ईश्वर को समर्पित करना है, ताकि जब यह मनुष्यों को संदर्भित करे तो यह अधिक समर्पित चीज हो। क्या मुझे कुछ भी कहने से पीछे हटना होगा? पुराने नियम के अधिकांश विद्वान मुझसे असहमत हैं। क्या इसकी संभावना है कि मैं यहां गलत हूं? ईमानदार सच्चाई यह है कि एनआईवी का अनुवाद और के बजाय और के साथ किया जाता है, इसलिए कुछ बिंदुओं पर आपको विनम्र होना होगा। लेकिन क्या आप अब भी जिद्दी हो सकते हैं? आप अभी भी कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि उसने उसे नहीं जलाया, मुझे लगता है कि उसने उसे भगवान को समर्पित कर दिया है। संदर्भ इस बात की ओर संकेत करता है, लेकिन मैं यहां गलत हो सकता हूं। तो वह यिप्तह है। किसी समूह का चिन्ह। अब शिबोलेथ और सिबोलेथ, यह एक एसएटी शब्दावली प्रश्न है। शिबोलेथ का क्या मतलब है? शिबोलेथ एक ऐसा शब्द है जो आपको एक समूह में ले जाता है। क्या ऐसे कुछ समूह हैं जिनके पास कुछ निश्चित शब्द हैं जिनका उपयोग वे आपको अपने समूह में लाने के लिए करते हैं? अगर मैंने कहा मैं 99% का हिस्सा हूं, यह मुझे किस समूह में ले जाएगा? ऑक्यूपाई वॉल सेंट, हां मैं 99% का हिस्सा हूं, इन वेतनों पर आप गारंटी दे सकते हैं कि मैं 1% का हिस्सा नहीं हूं। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। विभिन्न समूहों के पास कुछ मूल शब्द होते हैं जिनका वे उपयोग करते हैं। क्या आपने इसे हाई स्कूल में देखा है? क्या वे अब भी हाई स्कूलों में ऐसा करते हैं? विभिन्न समूहों के पास अलग अलग मूल शब्द हैं जिनका वे उपयोग करते हैं। एथलेटिक लोग एक निश्चित तरीके से बात करते थे। मेरे समय में जो लोग ड्रग्स ले रहे थे वे एक अलग तरीके से बात करते थे। तो अलग अलग लोग अलग अलग जिव टॉक के साथ बात करते हैं। तो यहां यिप्तह के साथ क्या हुआ? यिप्तह जॉर्डन में लड़ रहा है। जो एप्रैमी लड़ रहे थे वे एक अलग क्षेत्र में थे। वे यिप्तह की सहायता के लिए नहीं आए, इसलिए वे यिप्तह के पास आते हैं और वे यिप्तह के साथ युद्ध करना चाहते हैं और कहते हैं, आपने हमें युद्ध के लिए आमंत्रित नहीं किया, हम आने वाले हैं और अब आपके साथ गन्ना उठाएंगे। इसलिए यिप्तह ने यर्दन नदी पर पड़ाव डाला। जैसे ही एप्रियामी जॉर्डन पार करते हैं, वह उनसे शिबोलेथ कहलवाता है। लेकिन वह जानता है कि क्योंकि वे एप्रैम से हैं, वे शिबोलेथ नहीं कह सकते, क्योंकि वे हमेशा सीए कहते हैं कार के लिए और वे आइडर कहते हैं। और वह जानता है कि क्योंकि वे ये शब्द कहते हैं, वह जानता है कि वे बोस्टन से हैं। वह जानता है कि क्षेत्रीय बोलियां हैं। यदि मैं कहता हूं आप सभी मेरे स्थान पर आए, जैसे ही मैं कहता हूं आप सभी, तो क्या होता है? न्यू इंग्लैंड में जब आप सब कहते हैं तो आपका आईक्यू 20 अंक कम हो जाता है। न्यू इंग्लैंड में ऐसा ही है। दूसरी ओर यदि आप न्यू इंग्लैंड में ब्रिटिश लहजे में बात करते हैं तो आपका आईक्यू 20 अंक बढ़ जाता है। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में नहीं। तो मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि जब वे यहां जॉर्डन पार करते हैं तो वह कहते हैं शिबोलेथ कहो, और वे कहते हैं शिबोलेथ। तब उसने कहा वे लोग एप्रैमी हैं। उनके बोलने के ढंग से ही उसे पता चल गया कि वे झूठ बोल रहे हैं। तब उसने एप्रैमियों को मार डाला। तो इस शिबोलेथ का उपयोग अब सामान्य तौर पर अंग्रेजी भाषा में एक निश्चित समूह के भीतर एक मूल शब्द के लिए किया जाता है, जिसका अर्थ है कि आप उस समूह के साथ पहचाने जाते हैं। इसलिए प्रत्येक समूह में ये मूल शब्द या विशेष कोड शब्द होते हैं। वैसे क्या हम ईसाई एक निश्चित भाषा में बात करते हैं जो अलग है? मैं कह रहा हूं कि हमारे पास अलग अलग प्रचलित शब्द भी हैं। प्रत्येक समूह के पास वे होंगे, इसलिए कोड शब्दों की पहचान करने वाले समूह को शिबोलेथ्स कहा जाता है। सैमसन का परिचय अब शिम शोन, आप में से कितने लोग सैमपसन शब्द का उच्चारण करते हैं? इसमें पी के साथ सैमपसन, हम इसका उच्चारण पी से करते हैं। क्या सैमसन में कोई पी है? असल में आप जो कर रहे हैं वह ग्रीक उच्चारण का उपयोग कर रहे हैं। ग्रीक में पी है और यह अंग्रेजी में आ गया है। वैसे आप देख रहे हैं कि एसएमएस शमोश का अर्थ सूर्य है, तो वास्तव में उसके नाम का अर्थ है सनी। तो सैमसन, यदि आप वास्तव में उसके नाम का अनुवाद करें तो उसका अर्थ सनी है। मैं बस मजाक कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में नहीं। मैं सैमसन को सनी कहता हूं। अब हम सैमसन के बारे में क्या जानते हैं? सबसे पहले मुझे सैमसन के साथ कुछ क्षेत्रीय बातें करने दीजिए। पलिश्ती कहाँ है? आइए एक कक्षा गतिविधि करें, गैलील सागर, जॉर्डन नदी, मृत सागर। आप लोग जॉर्डन हैं, आप लोग इसराइल हैं और आप लोग भूमध्य सागर हैं। फिलिस्ती कहाँ होंगे? ठीक भूमध्य सागरीय तट पर। पलिश्ती हमेशा पश्चिम से यहूदियों पर हमला करने की कोशिश करते रहते हैं। वे यहूदियों पर कहाँ हमला करने जा रहे हैं? यहूदी कहाँ है? यरूशलेम में, इसराइल में। यहूदी हमेशा पहाड़ों पर रहते हैं, इसलिए पलिश्ती सदैव पहाड़ों पर चढ़ आते थे। लेकिन केवल कुछ निश्चित रास्ते हैं जिनसे आप पहाड़ों तक पहुंच सकते हैं। तो पहाड़ों में उन रास्तों में से एक बेत होरोन ऊपरी और निचले बेत होरोन से होकर जाता है। वैसे सड़कें आज भी वही हैं। आज तक जब आप पहाड़ों पर जाना चाहते हैं तो आप उन्हीं सड़कों का अनुसरण करते हैं जो वहां 2 या 3 हजार वर्षों से चली आ रही हैं। यह बेत होरोन प्रवेश द्वार है। यहां एक और प्रवेश द्वार है। यह किरियत है जेरीम प्रवेश द्वार। यहीं से दाऊद जहाज को यरूशलेम तक ले गया। अत यहीं पर दाऊद संदूक को लाया। क्या आपको याद है कि उस आदमी ने संदूक को छू लिया था और प्रभु ने उसे मार डाला था? उज्जा, पेरेस उज्जा। और इसलिए यह किरियत है जेरीम प्रवेश द्वार। अब सैमसन कहाँ है? शिमशोन या सनी सूर्य के घर जोहर और बेत शेमेश के क्षेत्र में रहता है। सैमसन यहीं से है। तिम्ना से शिमशोन की पत्नी अब सैमसन की पहली पत्नी कहाँ से है? जब वह शादी करने जाता है तो उसकी पत्नी तिम्ना से होती है। क्या आप देख रहे हैं कि वह कितना करीब है? तो वह ऊपर चला जाता है और यही वह जगह है जहां सैमसन घूमता है और जहां वह पड़ोसी शहरों में घूमती है। इसलिए सैमसन इस पलिश्ती महिला से मिलता है और तभी वह नीचे जाता है और उसके साथ संपर्क करता है। अब एक और प्रवेश द्वार जो बाद में हमारे लिए महत्वपूर्ण है वह है एला घाटी। वैसे क्या आपको यहाँ गात शहर दिखाई देता है? गात से कौन प्रसिद्ध है? वह एक बड़ा आदमी है जिसे बच्चों द्वारा उस पर पत्थर फेंकना पसंद नहीं था, गैत का गोलियत। जब गत का गोलियत आता है और इसराइल से लड़ता है तो वे इस एला घाटी में लड़ते हैं। एला घाटी सीधे किस शहर तक जाती है? बेथलेहम। डेविड बेथलेहम से हैं। डेविड बेथलेहम से यहीं आता है और यहीं डेविड गोलियत से लड़ता है। इस तरह आप प्रवेश करते हैं। यदि आप पहाड़ों पर चढ़ना चाहते हैं तो आप इसे इसी तरह करते हैं और यहीं पर उन्होंने लड़ाई की। गोलियत गत से था और दाऊद बेतलहम से था और वे एला की घाटी में लड़े थे। तो सैमसन शिमशोन वह यही किरियत में घूमने जा रहा है जेरिम प्रवेश द्वार और वह तिन्ना की इस लड़की से मिलने जा रहा है। सैमसन की प्रारंभिक कथा अब अध्याय 13। यहाँ सैमसन के साथ क्या होता है? इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, तो आपके पास यह विद्रोह है और फिर प्रतिशोध है। फिर इसराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और इस प्रकार यहोवा ने उन्हें पलिश्तियों के हाथ में 40 वर्ष के लिए सौंप दिया। क्या पलिश्तियों को यहूदियों पर हमला करना पसंद था? हाँ, उन्होंने किया। पलिश्ती लोहे से काम करते थे, उनके पास तकनीक थी और वे यहूदियों के पीछे चले जाते थे। होता यह है कि मानोह नाम का एक आदमी है, उसकी एक पत्नी है। मानोह की पत्नी के पास एक स्वर्गदूत आया और उसने कहा कि तुम्हारे एक बेटा होगा और जब तुम्हारे बेटा होगा तो उसके जन्म से कुछ भी अंगूर न लेना और न ही उसके बाल काटना। दूसरे शब्दों में जन्म से ही वह क्या बनने वाला है? वह जन्म से ही नाजीर है। अपने पूरे जीवन काल में कभी भी अपने बाल नहीं कटवाते। वैसे उसे यहाँ तक कहा गया है, शराब मत पीना, आपके पेट में एक बच्चा है जो नाजीर बनने वाला है और उसकी माँ होने के नाते आपको शराब नहीं पीना है। इसका मतलब यह है कि प्रसव पूर्व देखभाल में आपको दवाएं नहीं लेनी चाहिए, है ना? नहीं, वह मजाक था, वास्तव में नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्या उसे शराब नहीं पीनी चाहिए क्योंकि वह शराब है? या क्या उसे दाखमधु नहीं पीना चाहिए क्योंकि वह नाजीर है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह नाजीर है। शिमशोन का तिम्ना की पलिश्ती स्त्री से विवाह। इस प्रकार सैमसन का जन्म हुआ और सैमसन बड़ा हुआ। तब शिमशोन तिम्ना को जाता है और वहां उसे एक स्त्री मिलती है जिससे वह विवाह करना चाहता है। अध्याय 14 में शिमशोन तिम्ना को गया और उसने एक युवा पलिश्ती स्त्री को देखा और उसने लौटकर अपने माता पिता से कहा, मैंने तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री देखी है, अब उसे मेरे लिए मेरी पत्नी के लिए ले आओ। वह लड़की को देखता है, लेकिन प्रश्न, प्राचीन काल में क्या माता पिता विवाह की व्यवस्था करते थे? क्या माता पिता को शादी की व्यवस्था करनी थी? मुझे लगता है यह एक अच्छी बात है। वास्तव में यह पागलपन है, लेकिन उस समय उन्होंने इसे इसी तरह किया था। मुझे यह नहीं कहना चाहिए कि यह पागलपन है। वैसे क्या कुछ संस्कृतियां आज तक ऐसा करती हैं? माता पिता विवाह कहाँ तय करते हैं? इसलिए वह अपने माता पिता के पास जाता है और कहता है, मेरे लिए यह लड़की लाओ जिसे मैंने देखा है। मैंने अक्सर पूछा है, प्यार क्या है? भूगोल प्लस हार्मोन प्यार के बराबर है। आप उसे लिख सकते हैं, भूगोल प्लस हार्मोन प्यार के बराबर है। सैमसन को इस लड़की से प्यार क्यों हुआ? वह अगले शहर तिन्ना में स्थित थी। आपको किससे प्यार हो जाता है? आपके आसपास जो लोग हैं, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, जिन लोगों के साथ आप स्कूल जाते हैं। आपको पता है क्या भूगोल का इसमें कोई बड़ा योगदान है? इसमें भूगोल का बहुत बड़ा योगदान है। तो तिन्ना के ठीक बगल वाले सैमसन को इस लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन उसके माता पिता वापस आ जाते हैं। उसके पिता और माता ने उत्तर दिया, क्या तेरे कुटुंबियों में व हमारी सारी प्रजा में कोई स्वीकार्य स्त्री नहीं है? क्या तुम्हें पत्नी पाने के लिए खतनारहित पलिश्तियों के पीछे जाना होगा? परंतु शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसे मेरे लिए ले आओ, वह मेरे लिए सही है। यह दिलचस्प है, यहाँ माता पिता हैं, और यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे मैं सामने लाना चाहता हूँ, जहाँ तक तिम्ना की उसकी पत्नी सैमसन को नहीं कहने में असमर्थ थी। सैमसन को वही मिलता है जो सैमसन चाहता है। सैमसन इस लड़की को चाहता है, वे इस पर आपत्ति करते हैं और वह उनकी आपत्ति को नजरअंदाज कर देता है। वह इस लड़की को तिन्ना से, पलिश्ती को तिन्ना से लाता है। अब प्रभु भी इसमें शामिल थे और पलिश्तियों को हराने के लिए इस महिला के प्रति सैमसन के आकर्षण का उपयोग करने जा रहे थे। तो सैमसन पहली बार नीचे जाता है और वह क्या करता है? उसकी मुलाकात एक शेर से होती है। सैमसन, एक बहुत ही ताकतवर लड़का, अपने नंगे हाथों से शेर को चीर देता है। वह शेर को अलग ले जाता है, शेर को मार देता है और फिर वह अपनी भावी पत्नी को देखने के लिए नीचे चला जाता है। वह दूसरी बार वापस आता है और जब वह शेर के शव के पास वापस आता है तो शेर के शव में क्या है? वहां कुछ मधुमक्खियां और कुछ शहद हैं। तो वह क्या करता है? वह इसे पकड़ लेता है। मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि आप सभी साजो सामान के बिना ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन उन्हें या जो कुछ भी धूम्रपान कर दें और उसे शहद मिल जाए, तो अब उसके पास क्या है? अब वैसे यह आपको इस शेर और शहद के बारे में कहानी बताता है, क्योंकि यह आगे चलकर महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फिर वह वहां चला जाता है। वह एक बड़ा मजबूत आदमी है जो कुछ अविश्वसनीय कारनामे करने जा रहा है। वह सचमुच बहुत ताकतवर है। जाहिर है ईश्वर की आत्मा से संपन्न, लेकिन साथ ही वास्तव में सिर्फ एक मजबूत व्यक्ति। क्या आपने कभी कोई बड़ा मजबूत एथलेटिक प्रकार का लड़का देखा है जो स्मार्ट लड़का भी बनना चाहता है? इसलिए सैमसन को यहां साबित करना होगा कि वह चतुर व्यक्ति है। तो वह उन्हें यह पहेली बताने जा रहा है। तो वह शादी में जाता है और वे 7 दिवसीय शादी की दावत में शामिल होते हैं। सैमसन कहता है, मैं तुम्हें एक पहेली बताता हूं। सैमसन उनसे कहता है, यदि तुम मुझे पर्व के 7 दिनों के भीतर उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें 30 सनी के वस्त्र और 30 जोड़े कपड़े दूंगा। यदि तुम मुझे उत्तर नहीं बता सकते तो तुम्हें मुझे 30 सनी के वस्त्र और 30 जोड़े कपड़े देने होंगे। हमें पहेली बताओ, उन्होंने कहा, चलो इसे सुनते हैं। उसने उत्तर दिया और यह प्रसिद्ध पहेली है। बाइबल में भी पहेलियां हैं। खाने वाले में से खाने को कुछ निकला और बलवंत में से कुछ मीठा निकला, तो फिर क्या होता है? वे पहेली को हल नहीं कर सके और 4th दिन उन्होंने सैमसन की पत्नी से पूछा, यदि आप इसे उस आदमी का आमने सामने सामना करने से प्राप्त नहीं कर सकते तो आप क्या करते हैं? पत्नी के माध्यम से जाओ। प्रश्न, क्या वह प्रभावी है? हाँ, यह है। मैं इसकी अनुशंसा नहीं करता, लेकिन यह प्रभावी है। क्या वहां ऐसा कुछ किया गया है? यदि आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। तो ठीक है, 4th दिन उन्होंने कहा, अपने पति को हमें पहेली समझाने के लिए मनाओ, नहीं तो हम तुम्हें और तुम्हारे पिता के घराने को जलाकर मार डालेंगे। क्या तुमने हमें यहाँ लूटने के लिए बुलाया था? तब सैमसन की पत्नी सिसकते हुए सैमसन पर गिर पड़ी। तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम मुझसे नफरत करते हो। क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते? आपने मेरे लोगों को एक पहेली दी है और आपने मुझे इसका उत्तर नहीं बताया है। आप अपनी शादी में हैं और यह 7 दिवसीय दावत की शादी की तरह है, और आपकी पत्नी चिल्लाना शुरू कर देती है। आप क्या करते हैं? अब मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब मैं इस मार्ग पर जाता हूं तो बेहतर होगा कि मैं इसे उठाऊं। मैं एक युवक को जानता हूं, जब उसकी शादी हुई तो वे शादी में शामिल हुए। वैसे क्या महिला पर बहुत दबाव है? जब आप किसी शादी में जा रहे हो तो क्या वहां भारी दबाव होता है? हाँ, जहां तक दबाव का सवाल है, मेरी राय में क्या अब शादियां पहले से भी बदतर हो गई हैं? तो यह महिला बहुत दबाव में थी। वे समारोह में गए और सब कुछ ठीक लग रहा था। वे एक चर्च के तहखाने में चले गए। वहां उनका स्वागत समारोह था। उन्होंने सबके साथ खाना खाया और घूम घूम कर सबका अभिवादन किया। यह अच्छा है। और जब यह सब खत्म हो जाता है तो वे डिब्बे लेकर कार में बैठ जाते हैं और वे सूर्यास्त के समय निकल पड़ते हैं और वे अपनी हनीमून की रात पर चले जाते हैं। लड़का कहता है, आखिरकार मैंने इस महिला से शादी कर ली है। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। यह लड़का बहुत खुश है। वे होटल पहुंचते हैं और अचानक वह रोने लगती है। वह आदमी यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है, मैंने क्या किया? कुछ गलत बोला? क्या ऐसा कुछ था जो मुझे नहीं करना चाहिए था? आप क्या चाहते हैं? क्या आप फूल चाहते हैं? क्या आप क्या चाहते हैं? तुम जो चाहोगे मैं ले लूंगा। तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रहा हूँ। क्या आपने कभी किसी महिला से पूछा कि वे क्यों रो रही हैं? यदि वे नहीं जानते कि वे क्यों रो रहे हैं, तो आप इसका पता कैसे लगाएंगे? क्या मैंने प्रतिज्ञाएं गलत कही थी? मैंने प्रतिज्ञा ठीक कही। तो आप घबरा रहे हैं क्योंकि आपकी पहले कभी शादी नहीं हुई है और अचानक वह रोने लगती है। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ, क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहाँ एड्रेनालाइन वास्तव में मजबूत है और इतना दबाव है और एड्रेनालाइन है और फिर अचानक आपको आराम मिलता है। जब आप अचानक नीचे आते हैं तो बिना किसी कारण के रोने लगते हैं? ऐसा ही हो सकता है। खैर, उस शादी में यही हुआ था जिससे मैं भली भांति परिचित हूँ। महिला रोने लगती है और ऐसा नहीं था कि उसने कुछ गलत किया है, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि शादी और सारा दबाव खत्म हो गया था। अब यह सब खत्म हो चुका था और यह उसे नीचे ले गया। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जब एक पत्नी शादी में रोती है तो यह अच्छा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसा इन चक्रों के कारण होता है। मैं बस आपको चेतावनी देना चाहता हूँ क्योंकि किसी ने मुझे चेतावनी नहीं दी और यह एक ऐसी रात थी जो बहुत अच्छी नहीं रही। सैमसन मूर्ख क्यों है? उसकी पत्नी रोते हुए उस पर गिर पड़ी। तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते। तूने मेरी प्रजा को एक पहेली बताई, परंतु तूने मुझे उसका उत्तर नहीं बताया। अब सैमसन यहाँ कुछ बातें कहने जा रहे हैं। क्या आंसू शक्तिशाली हैं? क्या सैमसन मजबूत है? एक औरत रोती है और ताकतवर आदमी क्या? जब कोई महिला रोती है तो आप क्या करते हैं? तुम असहाय हो, एक महिला के आंसुओं के आगे बड़े ताकतवर सैमसन बेबस हैं। आप क्या कर सकते हैं? तो आंसू हैं, लेकिन फिर क्या होता है? और मैं जो सुझाव देने जा रहा हूँ वह यह है कि एक महिला के साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह सैमसन की प्रतिक्रिया है। वह रो रही है, तुमने मुझे अपनी प्यारी पत्नी के बारे में नहीं बताया। वह जवाब देता है, मैंने इसे अपने पिता और माँ को भी नहीं समझाया है, मुझे आपको यह क्यों समझाना चाहिए? नियम नंबर एक, आप इसमें ससुर और सास को न लाएं। तुम ससुर सास को ले आओ, यह फट जाता है, यह भद्दा है, आप ऐसा कभी न करें, यह वाकई बेवकूफी है। अब आप कहेंगे, हिल्डेब्रांट, आप यह कैसे जानते हैं? मैं जानता हूं कि यह बेवकूफी है। क्या वहां ऐसा किया गया है? मैं बस आपको यह बता रहा हूं कि यह अनुभव की आवाज है। तुम इसमें सासससुर को मत लाना, आप उन बाहरी चीजों के बिना इससे निपटते हैं। तो सैमसन ने यहां जो किया वह सचमुच मूर्खतापूर्ण था। तुम यह मत कहो, मैंने अपने पिता और माँ को भी नहीं बताया है, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? इससे उसकी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसने उसे बस अपने पिता और माँ के ऊपर या नीचे रखा है। अंतर्गत माना जाता है कि उसकी शादी इस महिला से होनी है। ये वाकई बेवकूफी है। और इस प्रकार वह पर्व के पूरे 7 दिन तक रोती रही। इसलिए 7वें दिन आखिरकार उसने उसे बताया, क्योंकि वह लगातार उस पर दबाव डाल रही थी। उसने बदले में अपने लोगों को पहेली समझाई। 7वें दिन सूर्यास्त से पहले वे अंदर आए और कहा, शहद से अधिक मीठा क्या है और शेर से ज्यादा ताकतवर क्या है? और उन्होंने उसकी पहेली सुलझा दी। तो फिर इस आदमी को यह बात समझ में नहीं आती। ये वाकई मजेदार है। मेरा मतलब है कि यह सचमुच भयानक है, ऐसा कभी न करें। उन्हें उसकी पहेली समझ में आ गई, शहद से अधिक मीठा क्या है, शेर से ज्यादा ताकतवर क्या है। शिमशोन ने कहा, यदि तू मेरी बछिया को न जोतता तो तू मेरी पहेली न सुलझा पाता। इसे रूपकात्मक रूप से बोलना कहा जाता है। जब आप रूपक के रूप में बोलते हैं और अपनी पत्नी के प्रतीक के रूप में बछिया का उपयोग करते हैं तो यह अच्छा नहीं है। अब वैसे क्या ऐसे कुछ जानवर हैं जिनका उपयोग बाइबल एक स्त्री के प्रतीक के रूप में करती है, जैसे कि चिकारा? वे सुंदर जानवर हैं। सुलेमान के गीत में नहीं, नहीं। एक बछिया, नहीं, आप एक बछिया का उपयोग नहीं करते, वह भयानक है। तो सैमसन यहां सचमुच यह खत्म हो गया है। तो क्या होता है? प्रभु की आत्मा शक्ति के साथ उसमें उतरती है। वह नीचे गया और 30 पलिश्तियों को मार डाला और उनके कपड़े वापस लाकर लोगों को दे दिए। फिर वह अपनी पत्नी के साथ क्या करता है? और वह क्रोध से जलता हुआ अपने पिता के घर गया और शिमशोन की पत्नी उसके मित्र को ब्याह दी गई। अब यह कुछ ऐसा है जो आपको जानना होगा। इस प्रकार के संदर्भों में आपका एक मित्र होता है जो आपके सबसे अच्छे व्यक्ति जैसा होता है। यदि लड़का जमानत पर छूट जाता है तो सबसे अच्छा आदमी उस महिला से शादी कर लेता है। तो सैमसन का कहना है कि वह इस विवाह प्रक्रिया में है। यह टूटकर गिर जाता है और इसलिए दूसरा आदमी अंदर आता है और इसलिए सैमसन घर वापस चला जाता है। यह एक विपत्ति है। विद्यार्थी प्रश्न, लोग कितनी बार और क्यों जमानत पर छूट जाते हैं? सैमसन को जमानत मिल गई क्योंकि वह गुस्से में था, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था और उसे नहीं बताया था। लेकिन अगर उसने उसे धोखा नहीं दिया होता तो उन्होंने उसके पिता के साथ क्या किया होता? उन्होंने उसके पिता को मार डाला होगा। तो हाँ, उनके पास उस समय भी बैकअप था, लेकिन कारण अक्सर जटिल होते हैं। तो इस तरह से सैमसन की शुरुआत होती है। यह उनकी पहली पत्नी है, उनकी पत्नी तिन्ना से हैं। 3 हमले और आप बाहर। यह उनका पहला हमला है। अब पुराने नियम के लोगों पर परमेश्वर की आत्मा के संबंध में यह कहता है, परमेश्वर की आत्मा सैमसन पर आई और उसने आगे बढ़कर 30 पलिश्तियों को मार डाला, तो परमेश्वर की आत्मा उसकी ताकत है। परमेश्वर की आत्मा और पुराने नियम के लोगों के बीच क्या संबंध है? क्या पुराने नियम में परमेश्वर की आत्मा ने कभी लोगों को छोड़ा था? क्या आप मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति बता सकते हैं जहां भगवान की आत्मा ने उसे छोड़ दिया हो? राजा शाऊल। अब कुछ लोग सोचते हैं कि जब परमेश्वर की आत्मा उसे छोड़ देती है तो इसका मतलब है कि शाऊल अब परमेश्वर में विश्वास नहीं करता है और उसने अपना उद्धार खो दिया है। नहीं, नहीं, नहीं। परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें विशेष उपहार दिए। शिमशोन शक्ति के वरदान से संपन्न था, शाऊल को राजत्व का वरदान प्राप्त था। जब आत्मा उसे छोड़ देती है तो इसका मतलब है कि राजत्व की भावना शाऊल को छोड़ देती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह आवश्यक रूप से अविश्वासी है। शाऊल की अन्य समस्याएं हैं जो इसे स्पष्ट करती हैं, परंतु यह परमेश्वर की आत्मा नहीं थी। कुछ लोगों को लगता है कि परमेश्वर की आत्मा केवल नए नियम के अधिनियम 2 में पेंटेकोस्ट में आई थी। पिंतेकुस्त पर आत्मा नीचे आती है। क्या पुराने नियम में परमेश्वर की आत्मा थी? हाँ, यह था, और यह लोगों पर आया, इन लोगों को कुछ उपहार दिए। सैमसन के मामले में यह ताकत थी, शाऊल के मामले में यह राजत्व था। तो आप पुराने नियम में लोगों के साथ काम करते हुए परमेश्वर की आत्मा को देखेंगे। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर की आत्मा यहां नहीं थी। यह अधिनियम 2 में है, लेकिन मैं इसे आपके नए नियम के प्रोफेसर के लिए छोड़ दूंगा। इसलिए परमेश्वर की आत्मा पुराने नियम में लोगों को उपहार प्रदान करती थी। सैमसन और गाजा स्ट्रिपर अब वह सैमसन की पहली महिला है। दूसरी महिला कौन है? सैमसन गाजा चला गया। मैं इस महिला को गाजा स्ट्रिपर कहता हूं। नहीं, यह गाजा पट्टी है। आपको एहसास होता है कि स्ट्रिपर वहां फिट बैठता है। तो ये है गाजा। वह गाजा चला जाता है। सैमसन गाजा गया जहां उसने एक वेश्या को देखा। वह उसके साथ रात बिताने के लिए अंदर गया। अब मैंने आपको बताया कि डॉक्टर गॉर्डन ह्यूजेनबर्गर के प्रति मेरे मन में कितना सम्मान है। वह एक शीर्ष विचारक और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, सबसे अच्छे उपदेशकों में से एक हैं जिन्हें मैंने अपने जीवन में कभी सुना है। डॉक्टर ह्यूजेनबर्गर इब्रानियों 11 तक जाते हैं, और इब्रानियों 11 में यह कहा गया है, आस्था के महान नायकों में से एक सैमसन है। इब्रानियों 11 में सैमसन को आस्था के महान नायकों में सूचीबद्ध किया गया है। इसलिए वह वापस आता है और कहता है कि वह कमजोरियों को नकारात्मक नहीं मानता, यहां तक कि सैमसन का वेश्या बनने तक भी नहीं। मैंने सोचा वह ऐसा कैसे करता है। उन्होंने सैमसन से पहले न्यायाधीशों पर अपनी उपदेश श्रृंखला बंद कर दी। मैं अपनी सीट के किनारे पर खड़ा समाधान की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि वह क्या करता है। वह कहता है, इसराइल में भी कौन ऐसी वेश्या के पास गया था जो पूरी तरह से कोशेर थी? क्या किसी को याद है कि यहोशू ने जासूसों को कैसे भेजा था, और जासूस किसके पास गए? राहब वेश्या, अब क्या वे वहां उसके व्यवसाय के लिए थे या वे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे? यह एक जासूसी का प्रयास था। तो डॉक्टर ह्यूजेनबर्गर, जाहिरा तौर पर, और मैंने उन्हें यह कहते हुए नहीं सुना है, मैंने इसे अंगूर के माध्यम से सुना है, उन्होंने कहा कि सैमसन इस महिला के घर शायद जासूसी के संदर्भ में जा रहा था। मुझे लगता है कि वह जासूसी कर रहा था, लेकिन वह जमीन से अलग किसी चीज पर थी, यदि आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। इसलिए मैं इसे सैमसन द्वारा दोबारा महिलाओं के साथ ऐसा करने के रूप में मानूंगा। इसलिए मैं इसे नकारात्मक संदर्भ में लूंगा, लेकिन मैं इस मार्ग का उपयोग इस महिला के लिए करना चाहता हूं जो गाजा की वेश्या है। पलिश्ती उन्हें घेर लेते हैं और कहते हैं, सुबह हम सैमसन को मार डालेंगे। इसलिए सैमसन आधी रात में उठता है और वह दरवाजे की चौखट को दीवार से बाहर खींचता है और उसके साथ चल देता है। सैमसन की ताकत के लिहाज से अब यही मेरे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यदि आप इस दरवाजे की चौखट को यहां से बाहर खींच लें, तो क्या इस चौखट को ले जाने के लिए यह एक बड़ी चीज होगी? यह चौखट धातु से बनी है, और ईमानदारी से कहूं तो यह सस्ती धातु या शीट धातु है। यह लगभग 30 से 40 पाउंड होगा। यह इतना ज्यादा नहीं है कि आप लंबी दूरी तक 30 से 40 पाउंड वजन उठा सकें, है ना? जब आप प्राचीन दुनिया में दरवाजों के खंभों को खींचते हैं, तो वे सस्ती धातु से नहीं बने होते थे, वे खंभों से बने होते थे। क्या हम 100 पाउंड के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, सैकड़ों पाउंड। सैमसन उन्हें खींचता है। दूसरी बात, क्या तुम लोगों ने कभी ऐसा किया है कि क्या कभी किसी ने यहां घास डाली है? जब मैं टेनेसी में था तो हमने घास डाल दी। मैं लगभग 25 वर्ष का एक युवा लड़का था, और इसलिए इन लोगों को घास की ये 100-200 गांठें मिलती हैं। उन्होंने कहा, तुम ट्रक में बैठो और उन्हें हमारे पास छत पर फेंक दो, तो मैं वहां जाता हूं और घास की ये गांठें 30 से 40 पाउंड की होती हैं और मैं उन्हें वहां फेंक देता हूं। इसलिए मैं घास की इन गठरियों को वहां फेंक रहा हूं। ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे सोचते हैं कि मैं शहरी चालाक हूं और वे देहाती लोग हैं। वे किसान हैं, मजबूत लोग हैं। तो मैं घास की उन गठरियों को वहाँ फेंक रहा हूँ और मैं आपको जानता हूँ कि घास की 20 गठरियाँ वहाँ फेंक रहा हूँ। फिर मैं घास की 30 गांठें वहाँ फेंक देता हूँ। फिर मैंने 40 और 50 फेंके। जब तक वे मेरे साथ समाप्त हो गए, मैं अपने कंधे से गठरियों को ऊपर धकेल रहा था। मैं अब अपनी बाहें नहीं उठा सकता था क्योंकि यह बहुत अधिक था। सैमसन लगभग 20 मील तक सामान ले जाता है और यह सब पहाड़ी पर था। उसने उनको हेब्रोन के सामने खड़ा किया। हम जानते हैं कि ये जगह कहाँ है। यह लगभग 20 मील है और यह चढ़ाई पर है। प्रश्न: जब आप वजन उठाकर पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो क्या चढ़ाई में कोई समस्या होती है? हाँ, और क्या 20 मील इस प्रकार का वजन उठाने के लिए अच्छी दूरी है? क्या यह लड़का हल्क है? यह आदमी एक विशाल व्यक्ति है। एक सामान्य इंसान, आप इस तरह पहाड़ी पर 20 मील चलने के लिए भाग्यशाली होंगे, और वह कम से कम इस तरह से कुछ 100 पाउंड ले जा रहा है। इसलिए सैमसन अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। वैसे परमेश्वर की आत्मा उसे सशक्त बनाने के लिए उस पर आती है और वह अत्यंत संपन्न है। तो यह तब होता है जब वह वास्तव में वहां की दीवारें या द्वार खींचता है। सैमसन और डेलिलाह अगली महिला, और यह उसके जीवन की अंतिम महिला है, डेलिलाह। डेलिलाह आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका एक रेडियो कार्यक्रम है। लेकिन यह कहता है, कुछ समय बाद उसे सैमसन प्यार हो गया। यह अध्याय 16 श्लोक 4 है। सोरेक घाटी की एक स्त्री से प्रेम हो गया जिसका नाम दलीला था। ध्यान दें, यह कहता है कि उसे उससे प्यार हो गया। इसमें दिक्कत क्या है? क्या आप में से कई लोगों को ग्रीक सोच में प्रशिक्षित किया गया है, जहां आपके पास अगापे है और आपके पास इरोस है ना? और अगापे और इरोस का प्यार बहुत अलग है ना? अगापे प्रेम बहुत आध्यात्मिक और आत्मबलिदान वाला प्रेम है, और इरोस प्रेम कामुक बहुत वासनापूर्ण है। तो कामुक प्रेम कामुक है, अगापे प्रेम आध्यात्मिक है। ग्रीक में हम अगापे और इरोस के बीच यह अलगाव करते हैं। हिब्रू में उन्हें वह भेद नहीं है। प्रेम के लिए अहव शब्द है और इसमें प्रेम और वासना दोनों शामिल हैं। तो इससे यह सवाल सामने आता है कि क्या प्यार और वासना के बीच अंतर करना हमेशा आसान होता है? जब मैं छोटा था तो उन्होंने यहाँ वासना और यहाँ वास्तविक प्रेम को चित्रित करने का प्रयास किया। मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि जब आप वास्तव में प्यार में पड़ते हैं तो क्या कभी कभी प्यार और वासना आपस में उलझ जाते हैं? इसलिए सोचने के इस यूनानी विश्लेषणात्मक तरीके से सावधान रहें। हिब्रू सोच कहीं अधिक जैविक और समग्र है। इसलिए सैमसन को उससे प्यार हो जाता है। अब वह उसे परेशान करती है और मूल रूप से पलिश्ती डेलिलाह के पास आते हैं और वे कहते हैं, डेलिलाह, क्या आप कुछ पैसे कमाना चाहते हैं? और दलीला कहती है, ओहा। और इसलिए उन्होंने कहा, हमें उसकी ताकत का रहस्य बताओ और हम उसे मार गिराएंगे। वे उसे कुछ चांदी देने जा रहे हैं और ध्यान देंगे कि वह क्या कर रही है। डेलिलाह सैमसन को बेच रहा है। यहां ध्यान दें कि क्या महिला पैसे के लिए पुरुष को बेच रही है? अक्सर इसका उल्टा होता है, लेकिन इस मामले में डेलिलाह सैमसन को बेच रही है। इसलिए वह सैमसन के पास आती है और वह सैमसन से कहती है, मुझे अपनी महान ताकत का रहस्य बताओ और तुम्हें कैसे बांधा और वश में किया जा सकता है। शिमशोन ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे 7 ताजी पेटियों से जो सूखी न हो बांध दे तो मैं किसी अन्य मनुष्य के समान ही कमजोर हो जाऊंगा। सोचो क्या। वह जाग गया और उसके पास 7 पेटियां बंधी हुई थीं। सैमसन, पलिश्ती तेरी घात में है, वह क्या करता है? वह अपनी चीजों को तोड़ता है और ऊपर कूद जाता है। अब जब आप लोगों ने इसे पढ़ा तो क्या आपको एहसास हुआ कि वह कितना मूर्ख है? वह बार बार ऐसा करती है कि कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। मैं समझाना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ मुद्दा यही है। यह कथा संकुचित है। क्या यह संभव है कि 7 ताजा पेटियों के साथ ये अलग अलग परीक्षण 7 रस्सियों तक जाकर उसके बालों की चोटियां बांधें? क्या यह संभव है कि इसमें महीनों और महीनों का समय लगा हो और यह कथा फैल गई हो? जब आप इतिहास लिखते हैं तो क्या लोग कभी उसका विवरण लेते हैं और उसे संक्षिप्त कर देते हैं? तो होता यह है कि ऐसा लगता है जैसे ये सभी घटनाएं एक के बाद एक और एक के बाद एक थीं और आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थीं। ऐसा हो सकता है कि वे समय के साथ अलग हो गए हों। मैं जो कहना चाह रहा हूं वह यह है कि सैमसन उतना मूर्ख नहीं है जितना वह दिखता है। तो यह काफी समय अवधि में फैला हुआ हो सकता है। खैर, आखिरकार वह नीचे उतरती है। वह बालों की चोटी बनाकर उसी तरह खेलना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि नागिन काम कर रही है। मैं यहाँ सैमसन के साथ जो सुझाव दे रहा हूँ वह यह है कि इतिहास कैसे लिखा जाता है, यह समय संपीड़न है। वैसे क्या इतिहासकार कभी 50 साल के अंतर वाली घटनाओं को लेते हैं और उन्हें इतिहास में एक के बाद एक रखते हैं? सिर्फ इसलिए कि आप इसी तरह से इतिहास लिख रहे हैं और वे सभी विवरणों को नहीं पढ़ना चाहते हैं। इसलिए इतिहास में हमेशा किसी न किसी प्रकार का संपीड़न शामिल होता है। यदि आप यहाँ गॉर्डन कॉलेज में इतिहास लेंगे तो आपको कुछ अद्भुत इतिहासकार मिलेंगे जो इतिहास लेखन के बारे में बात करते हैं कि इतिहास कैसे लिखा जाता है। कई बार एक दूसरे से दूर की घटनाओं को एक के बाद एक रखा जाता है क्योंकि आप इतिहास को ध्वस्त कर देते हैं, आप इतिहास को संकुचित कर देते हैं। यदि आप पूरी तरह से विस्तृत इतिहास लिखें तो यह किसी के भी पढ़ने के लिए बहुत अधिक होगा। सारा इतिहास संकुचित है। अब सैमसन के साथ दिलचस्प बात यह है कि डेलिला उसके बाल काटती है और वह पलिश्तियों से कहती है, मुझे लगता है कि इस बार मुझे यह मिल गया। यह बात है। इसलिए वह उसका सिर मुंडवा देती है और उसके बाल काट देती है और फिर शिमशोन को पलिश्तियों ने पकड़ लिया। जब वे उसे पकड़ लेते हैं तो सबसे पहले वे उसके साथ क्या करते हैं? जब वह वास्तव में मजबूत होता है तो आप उसकी ताकत का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन आप उसे अक्षम करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? तुमने उसे अंधा कर दिया। इसलिए उन्होंने उसे अंधा कर दिया, उन्होंने उसकी आंखें निकाल ली और अब वह मजबूत है, लेकिन एक बच्चा उस पर हमला कर सकता है क्योंकि वह नहीं देख सकता कि वह कहां से आ रहा है। वैसे वे उसे बाहर ले जाते हैं तो यह कहता है, जब लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने अपने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हमारे भगवान ने हमारे दुश्मन को हमारे हाथों में सौंप दिया है। लेकिन क्या भगवान सैमसन को अंधी अवस्था में भी काम पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसके उद्देश्य? पलिश्ती मंदिर में शिमशोन का अंत तो होता यह है कि लोग सैमसन को बाहर खींच लेते हैं और उससे चालाकी करवाते हैं। यह एक सर्कस की तरह है और आपको यह बड़ा मजबूत आदमी मिलता है और वह ये सभी करतब दिखाने वाला है। सैमसन ये चाले करता है, लेकिन फिर सैमसन उस लड़के से कहता है जो उसके साथ है और उसे मार्गदर्शन दे रहा है। सबसे पहले उसने ईश्वर से प्रार्थना की, फिर शिमशोन ने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु प्रभु मुझे स्मरण करो, हे परमेश्वर कृपया मुझे एक बार फिर बल दे और मुझे एक ही झटके में पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का बदला लेने दे। क्या सैमसन यहाँ बहुत प्रतिशोधी है? वह अपनी दोनों आंखों का बदला चाहता है। क्या आप चाहेंगे कि वह कहे, हे भगवान मैं चाहता हूं कि आपका नाम सम्मानित किया जाए, मैं दिखाना चाहता हूं कि आप विजेता हैं, लेकिन इसके बजाय वह अपनी दोनों आंखों को लेकर चिंतित है। सैमसन दो केंद्रीय स्तंभों तक पहुंचता है। वह दो केंद्रीय स्तंभों को अपने कब्जे में ले लेगा और वह लगभग 3,000 लोगों के लिए पूरी इमारत को ढा देगा। शिमशोन ने अपने जीवन में जितनी हत्याएं की उससे कहीं अधिक हत्याएं वह अपनी मृत्यु में करता है। अब यहां दिलचस्प बात यह है कि हमें इस कमरे में दो स्तंभ मिले हैं। यदि आप इन दो खंभों को गिरा दें तो क्या यह पूरी इमारत ढह जाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि पर्याप्त क्रॉस बीम हैं जो संभवतः छत को पकड़ सकेंगी। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने पलिश्ती मैदान में क्या पाया है? उन्हें कुछ पलिश्ती मंदिर मिले हैं। क्या अलग अलग संस्कृतियां अलग अलग शैलियों के मंदिर बनाती हैं? हाँ, इसराइल का मंदिर वैसे सोलोमन का मंदिर हीराम द्वारा फोनीशियन मॉडल पर बनाया गया था। क्यों? क्योंकि उसने इसे बनाने के लिए फेनिशिया के हीराम को काम पर रखा था। जब आप इसराइल के उस मंदिर को देखते हैं जिसे सुलेमान ने बनवाया था तो वह फोनीशिया में बने मंदिरों के समान ही था। ब्लूप्रिंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको फोनीशिया में मिला है। उन्होंने पाया कि पलिश्ती मंदिरों के बीच में भार वहन करने वाली दीवारों वाले दो स्तंभ हैं। दूसरे शब्दों में सारा भार उन दो स्तंभों पर आता है। आप उन दोनों खंभों को गिरा दें और इन पलिश्ती मंदिरों का क्या होगा? पूरी जगह ध्वस्त हो जाती है। तो क्या पुरातत्व यह दिखा रहा है कि यह वास्तव में काम करता है? आप इन दो खंभों पर जो भार है उस पूरी इमारत को बाहर निकालें, तो यह वास्तव में एक दिलचस्प पुष्टि रही है। बाइबल कहती है कि शिमशोन ने दो खंभों को गिरा दिया और वह स्थान ढह गया। सैमसन मर जाता है और यही सैमसन का जीवन है। अब सैमसन को आस्था के महान नायक के रूप में कैसे सूचीबद्ध किया जा सकता है? यह सब देखते हुए जीवन अस्त व्यस्त हो गया। ईमानदारी से कहूं तो बहुत सारा सामान गड़बड़ है। मुझे लगता है कि बाइबल हमें दिखा रही है कि आस्था के कुछ महान नायकों ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। इससे मुझे आशा मिलती है क्योंकि मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उम्मीद है कि उतना बुरा नहीं होगा, लेकिन आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। क्या आपने हमारे द्वारा देखे गए पुराने नियम के लगभग सभी लोगों को देखा है? क्या उनमें से प्रत्येक को किसी न किसी प्रकार की समस्याएं थीं? डेविड परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति है। क्या आप डेविड के बारे में अब जानते हैं? तो आपको इन सभी लोगों से दिक्कत है। इसलिए मुझे लगता है कि बाइबल कहती है कि ईश्वर में विश्वास करने वाले हर किसी से बेहतर नहीं है। उन्हें हर किसी की तरह ही समस्याएं हैं, लेकिन वे ईश्वर में विश्वास करते हैं और ईश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करता है। वे त्रुटिपूर्ण नायक हैं। भले ही चीजें खराब हो रही हों, फिर भी ईश्वर का सेवक बनने में सक्षम होना अद्भुत है। तो सैमसन एक नायक है, लेकिन वह संपूर्ण नहीं है। उसकी अपनी समस्याएं हैं और वास्तविक जीवन भी ऐसा ही है। दो लेवियों की कहानी। अब यहां दो शहरों की कहानी है, नहीं, दो लेवियों की कहानी है। न्यायाधीशों की पुस्तक इनके साथ समाप्त होती है, जिन्हें मैं दो लेवियों की कहानियां कहता हूं। खैर, सबसे पहले मैं ये कहानी शुरू करता हूं। यह पहला लेवी दानी लेवी है। मैं न्यायाधीशों के अध्याय 17 और 18 में जा रहा हूं। वहां एप्रैम का एक लड़का है। एप्रैम कहाँ है? एप्रैम बिन्यामीन के ठीक ऊपर है। तो यह सिर्फ यहूदा, बिन्यामीन और एप्रैम है, इसलिए यह वहीं पर है। एप्रैम में एक लड़का है और उसके पास बहुत सारा चांदी और सोना है, इसलिए वह खुद को एक आदर्श बनाता है। फिर वह कहता है, अरे मुझे अब एक मूर्ति मिल गई है। लेकिन अचानक एक लेवी एप्रैम से होकर गुजर रहा है और यह आदमी मीका लेवी से कहता है, तुम्हें पता है कि मुझे यह सोने चांदी की मूर्ति यहाँ मिली है, तुम मेरे पुजारी क्यों नहीं बनते? मुझे यह मूर्ति मिली है और मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम मेरे साथ रह सकते हो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम्हें आश्रय दूंगा, मैं तुम्हें खाना दूंगा, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और तुम मेरे पुजारी बनो। इस प्रकार लेवी मीका का याजक बन गया। मीका मूर्ति बनाता है और फिर उस लेवी को अपना याजक नियुक्त करता है। अब उसके पास एक मूर्ति और एक पुजारी है। इस आदमी के पास बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। उन्हें यहाँ यह धार्मिक कोना मिला हुआ है। अब क्या होगा? दान के गोत्र को क्या समस्या थी? दान का गोत्र पलिश्ती मैदान के पास है, जिसका मतलब है कि पलिश्ती हर समय दानियों पर हमला कर रहे थे, क्योंकि उनका जनजातीय क्षेत्र बिन्यामीन के पश्चिम में पलिश्तियों के साथ था। इसलिए दानियों ने कहा, हम पलिश्तियों से लड़ते लड़ते थक गए हैं और हम उत्तर की ओर जा रहे हैं। हमने सुना है कि यह वास्तव में बहुत अच्छा है और यह उत्तर में इसराइल की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। इसलिए दानी लोग उत्तर की ओर पलायन करते हैं। जब वे उत्तर की ओर पलायन करते हैं तो उन्हें किस जनजाति से गुजरना पड़ता है? एप्रैम। इसलिए वे मीका के घर के पास गए और उन्होंने कहा, अरे इस आदमी मीका के पास इन धातु की मूर्तियों में से एक है और उसके पास एक पुजारी यह लेवी भी है। तो दान की जनजाति अब यह एक पूरी जनजाति है जो आगे बढ़ रही है, और यह पूरी जनजाति एक आदिवासी क्षेत्र से एक शहर बनने जा रही है, इसराइल के उत्तर में, जहां काइल बैठा है। दैन इसराइल का सबसे उत्तरी बिंदु होने जा रहा है। यह जनजाति फिलिस्तीन क्षेत्र से उत्तर की ओर बढ़ रही है। वे इस लेवी के पास आते हैं और कहते हैं, हे लेवी, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आते? यदि तुम हमारे साथ आओ तो तुम लेवी हो सकते हो और पूरे गोत्र के लिए याजक बन सकते हो। आपको किसी छोटे परिवार के लिए पुजारी बनने की जरूरत नहीं है, आप पूरी जनजाति के लिए पुजारी बन सकते हैं। तो लेवी कहता है, अरे यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मैं आप लोगों के साथ चलूंगा। इसलिए लेवी उत्तर की ओर चला गया। फिर लेवी सुदूर उत्तर में दान नगर तक गया और उसने वहां एक मूर्ति स्थापित की। यह पुजारी फिर दान में पुजारी बन जाता है। क्या इसराइल में यह मूर्ति पूजा है? तो यहीं पर डैन इस मूर्ति पूजा से जुड़ा है। यहां एक निश्चित स्थान पर यह भी कहा गया है, इस कारण दानियों ने अपने लिए मूर्तें स्थापित की, और गेरशोम का पुत्र योनातान, जो मूसा का पोता था, और उसके पुत्र लेवी के गोत्र के लिए उस देश के बंधुवाई के समय तक याजक बने रहे। जब तक परमेश्वर का भवन शीलो में था, तब तक वे मीका की बनाई हुई मूर्तों का उपयोग करते रहे, इसलिए तंबू शीलो में होगा। जब भी यह शीलो में था, दानवासी दान में एक मूर्ति की पूजा कर रहे थे। अब एक और जगह होगी जहां बाद में मूर्ति स्थापित की जाएगी। यह कथा आपको बाद में इसके लिए तैयार कर रही है। बाद में यारोबाम नाम का एक लड़का आया, क्या तुम्हें वह याद है? और वह किन दो स्थानों पर मूर्तियां स्थापित करने जा रहा है? मेरा मानना है कि इस कथा से बाहर आकर एक डैन में होने वाला है। मेरा मानना है कि उनमें से एक डैन में होने वाला है। दूसरा सुनहरा बछड़ा कहाँ होगा जिसे वह स्थापित करने जा रहा है? क्या किसी को वह जगह याद है? बेथेल। हाँ, नीचे बेथेल में। उसने इसे बेथेल में क्यों स्थापित किया? क्या बेथेल एक पवित्र स्थान है? बेथेल में क्या हुआ? क्या बेथेल वह स्थान है जहां जैकब की सीढ़ी चढ़ी थी? यही बेथेल में जैकब की मुलाकात ईश्वर से हुई थी। इसलिए यारोबाम उस स्थान का उपयोग करता है और एक सोने का बछड़ा खड़ा करता है और कहता है, यह यहोवा है, यह यहोवा है, यह बछड़ा है। भगवान कहते हैं, नहीं, मैं बछड़ा नहीं हूँ, मैं सोने का बछड़ा नहीं हूँ। परमेश्वर ने दान और बेतेल में मूर्तियां स्थापित करने के लिए यारोबाम की निंदा की। इस प्रकार दान उत्तर में और बेतेल दक्षिण में था। तो यह कथा इस समस्या को स्थापित करती है जो बाद में इसराइल के सामने आएगी। लेवी और उसकी उपपत्नी, वह पहला लेवी दानी लेवी है। अब हमारा दूसरा लेवी और यह कहानी अध्याय 19 में है, और यह कहानी लेवी की उपपत्नी की एक स्थूल कहानी है। इसलिए मैं बस इस पर कुछ भूगोल डालना चाहता हूँ। सबसे पहले, क्या आप देख रहे हैं कि यही एक मुख्य सड़क चल रही है? यह सड़क रूट एक है। अब यह सड़क रूट 95 नहीं है, 95 एक बड़ा सुपर हाईवे है। इसे रिज रूट कहा जाता है। यह रिज रूट है। यह इसराइल की रीढ़ की हड्डी के नीचे उत्तर और दक्षिण में एक पहाड़ी पर बहती है। यह एक पर्वतमाला पर चलता है और इसे कटक मार्ग कहा जाता है। तो आप बेथेल से आते हैं, आप मिस्पा, गिबा, यरूशलेम, बेथलेहम की यात्रा करते हुए हेब्रोन तक जाते हैं। यह रिज मार्ग है। सबसे पहले, जब आपके पास एक लेवी और एक उपपत्नी हो तो क्या यह कोई समस्या है? लेवियों को एक उपपत्नी मिल गई और उपपत्नी घर भाग गई, इसलिए वह बेथलेहम में अपने घर भाग जाती है। तब लेवी उसका पीछा करता है और वह भागता है, और वह बेथलेहम में उसके माता पिता के घर पर उसे पकड़ लेता है। फिर यह कुछ कुछ धन्यवाद देने वाली छुट्टी जैसा है। क्या आपके माता पिता ने कभी कहा है कि जब आप घर आते हैं तो क्या आप एक या दो दिन और नहीं रुक सकते? क्या आपके माता पिता कभी ऐसा करते हैं? क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? और इसलिए क्या होता है कि लेवी थोड़ी देर के लिए उपपत्नी के घर पर रहता है। अंत में वह कहता है, हमें यहां से निकलना होगा, मुझे आगे बढ़ना होगा। इसलिए वे दोपहर को देर से निकलते हैं। जब वे यरूशलेम को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वे यहां लगभग 5 मील की दूरी पर आते हैं। जब वे यरूशलेम पहुंचे तो महिला थक गई थी और उसने कहा, मैं पैदल चलते चलते थक गई हूं, हम यहीं जेबस में क्यों नहीं रुकते? लेकिन वह आदमी कहता है, नहीं, मैं जेबस में नहीं जाना चाहता, वहां रहने वाले यबूसी लोग यहूदी नहीं हैं। तो वह कहता है, मैं एक यहूदी क्षेत्र तक जाना चाहता हूं, इसलिए मैं बेतलेहम से गिबा तक जा रहा हूं। इसलिए वह ऊपर आता है और यरूशलेम के पास से होकर गुजरता है। वह वहां नहीं जाएगा क्योंकि ये लोग यहूदी नहीं हैं। वह गिबा तक आता है और कहता है कि मैं गिबा में यहूदी लोगों के साथ रहना चाहता हूं। अब क्या होता है जब वह गिबा की ओर खींचता है? यहीं पर यह खराब हो जाता है। कहानी इस प्रकार है। वह शहर में आता है और यह लगभग सदोम और अमोरा जैसी स्थिति है। वह शहर में आता है और आम चौक के पड़ोस में रहता है। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए, मेरे साथ घर चलो। वह उपपत्नी और लेवी को अपने साथ घर बुलाता है और कहता है कि तुम्हें यहां से बाहर नहीं रहना चाहिए। एक बार मैं लॉस एंजल्स शहर में यात्रा कर रहा था, मैं पहले कभी वहां नहीं गया था। हम कैलिफोर्निया के लिए पूरे रास्ते गाड़ी से निकले, तो मैंने कहा कि मैं लॉस एंजल्स जाना चाहता हूँ, मैं लॉस एंजल्स में समुद्र तट देखना चाहता हूँ, और इसलिए मेरे दोस्त ने मना कर दिया, मैं लॉस एंजल्स में नहीं जाना चाहता। वह हमें चारों ओर ले जाने वाला था। मैंने कहा कि हम लॉस एंजल्स जा रहे हैं, और अंत में उन्होंने कहा कि हम वेनिस बीच नामक स्थान पर जाएंगे। तो हम वेनिस बीच पर उतरते हैं और अपने बच्चों के साथ वहां चारों ओर देखते हैं। हम उस वैन में वापस आ गए जो हमारे पास थी और हम थ्रूवेज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये थ्रूवेज हमारे सिर के ऊपर से गुजर रहे हैं और हम थ्रूवेज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए हम ला के इन सभी इलाकों में गाड़ी चला रहे हैं। हमें कोई अंदाजा नहीं कि हम कहाँ हैं। हम ऊपर खींचते हैं, वहां लगभग 6 फीट 5 इंच बड़े लोग हैं। हम अपनी खिड़की को ऊपर खींचते हैं और कहते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ कैसे पहुँचा जाए? पहली बात जो उस आदमी ने मुझसे कही, उसने मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। पहली बात जो उसने कही, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। प्रश्न, जब उस जैसा कोई व्यक्ति कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, प्रश्न करें, तो क्या हमें यहाँ नहीं होना चाहिए? जी श्रीमान, हम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। आप मार्ग तक कैसे पहुँचते हैं? तो उसने हमें बताया कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए, लेकिन क्या यह वास्तव में स्पष्ट था कि हम अपने पड़ोस से बाहर थे? तो आपके पास यहाँ इस बूढ़े आदमी के साथ क्या है जो उसे चेतावनी दे रहा है कि इस शहर के चौराहे पर न रहें, अन्यथा यह आपके लिए बुरा होगा। मेरे साथ घर चलो। तो वे उसके साथ घर आते हैं और क्या होता है? लड़के दरवाजे पर आते हैं और फिर क्या होता है? वे सदोम और अमोरा की तरह दरवाजा पीटना शुरू कर देते हैं। उस लड़के को हमारे पास ले आओ ताकि हम उसके साथ यौन संबंध बना सकें या ताकि हम उसे जान सकें। वह आदमी लगभग वही काम करता है जो उसकी बेटियों को बाहर धकेलता है। लेवी को उसकी उपपत्नी मिल गई है, इसलिए वह अपनी उपपत्नी को बाहर धकेल देता है। आपको कहानी याद है क्योंकि यह इतनी घिनौनी है कि आप इसे भूले बिना नहीं रह सकते। लड़के पूरी रात महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वह अगले दिन आती है, वह कहाँ है? लेवी अगले दिन दरवाजा खोलता है और वहां उसकी उपपत्नी जमीन पर पड़ी हुई है। वह कहता है, उठो चलो, अब चलने का समय हो गया है। लेकिन उपपत्नी हिलती नहीं है और अचानक उसे एहसास होता है उसकी उपपत्नी मर गई है। तो फिर वह क्या करता है? वह उसे अपने गधे पर बिठाता है और वापस ले जाता है। फिर वह क्या करता है? ये खराब हो जाता है। वह इस बात से इतना चिढ़ गया कि इन लोगों ने उसकी उपपत्नी को मार डाला और उसने उसे काटना शुरू कर दिया। उसने उसे 12 टुकड़ों में काट दिया और उसके शरीर के हिस्सों को इसराइल के 12 जनजातियों को भेज दिया। वैसे जब आप कोशेर यहूदी होते हैं और आपको शरीर का यह अंग मिलता है तो जनजातियां अजीब हो जाती हैं। यह है, वाह, हमने इसराइल में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। यहाँ क्या चल रहा है? गिबा के इस शहर में हम उन लोगों को बाहर निकालने जा रहे हैं। उन्होंने जो किया उसके लिए उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। तो जनजातियां, 11 जनजातियां इसे एक साथ प्राप्त करें। वे गिबा और बिन्यामीन के गोत्र पर, जो गिबा के पास स्थित है, चढ़ाई करते हैं। बेंजामिन जनजाति का कहना है कि हम गिबा को नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए बिन्यामीन का पूरा गोत्र इसराइल के अन्य 11 गोत्रों से लड़ने जाता है। बेंजामिनाइट अंतरादिवासी युद्ध, तो अब आपके पास जनजातीय युद्ध है और क्या होता है? इसराइली उन पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ते हैं और पहली बार में वे हार जाते हैं। वे भगवान के पास वापस जाते हैं, हे भगवान, क्या हो रहा है? ये लोग बुरे हैं। हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो सही है। भगवान कहते हैं, फिर से ऊपर जाओ। वे फिर से ऊपर जाते हैं और इसराइल के गोत्र बिन्यामीनियों को हरा देते हैं। लेकिन फिर समस्या क्या है? उन्होंने सभी बिन्यामीनियों को मार डाला, लेकिन 600 लोग भाग गए। वे इस रक्षात्मक ऊंचे क्षेत्र में चले जाते हैं जहां वे नहीं पहुंच सकते। इस प्रकार बिन्यामीन के लोग 600 बचे हैं। वे ऊपर जाकर 600 बिन्यामीनियों को मारना चाहते हैं, लेकिन समस्या क्या है? यदि आप 600 बिन्यामीनियों को मार डालते हैं तो इसराइल के एक गोत्र का क्या होगा? यह काले गैंडे की तरह है जो विलुप्त हो गए हैं और बेंजामिन जनजाति अब अस्तित्व में नहीं है। तो उन्हें एहसास हुआ, हमें समय निकालने की जरूरत है। इनमें से केवल 600 लोग बचे हैं। हमने जनजाति का पुनर्गठन कर लिया है या हम इसराइल की अपनी एक जनजाति को खोने जा रहे हैं। लेकिन फिर समस्या क्या है? ये लोग कैसे प्रजनन करेंगे? उन्हें किसी से शादी करनी है, लेकिन युद्ध में मौजूद सभी लोगों ने कसम खाई कि वे अपनी बेटियों की शादी किसी बिन्यामीन से नहीं करेंगे। क्या आप अपनी बेटी ऐसे लड़के को देना चाहेंगे? नहीं, तो उन्होंने कहा, हम अपनी बेटियां वहां नहीं देंगे। तो फिर सोचा, अब हम क्या करने जा रहे हैं? हमारे पास 600 लोग हैं, हमें उन्हें बच्चे देने होंगे और उन्हें फिर से बहुगुणित होने देना होगा। यहीं पर याबेश गिलाद नाम का एक नगर है और याबेश गिलाद के लोग युद्ध करने नहीं आए। तो उन्होंने क्या किया कि वे याबेश गिलाद में गए और 400 लड़कियों को इकट्ठा किया और उन 400 लड़कियों को बिन्यामीनियों के पास ले आए। अब आपके पास केवल 200 ही बचे हैं जिनकी पत्नियां नहीं हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? हमारे पास 200 ऐसे हैं जिनकी पत्नियां नहीं हैं। वैसे हंसो मत, मुझे लगता है कि आप इसे उसी तरह करना चाहते हैं जैसे बाइबल डेटिंग के बारे में बताती है। आप बिल्कुल वैसे ही डेट करना चाहते हैं जैसे बाइबल करती है। चुंबन डेटिंग को अलविदा, ठीक वैसे ही जैसे बाइबल ऐसा करती है। इसलिए वे शीलो को जाते हैं और लड़कियां दावत के लिए बाहर आ रही हैं और वे शीलो में नृत्य करने जा रही हैं जहां तंबू था। वे नृत्य करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हम इन 200 लोगों के साथ क्या करेंगे? हम उन्हें झाड़ियों में डाल देंगे। जब लड़कियां नाचने के लिए बाहर आती हैं तो लड़के झाड़ियों से बाहर आते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं और जो भी तुम पकड़ोगे वह तुम्हारा है। अब मैंने हमेशा कहा है कि गॉर्डन कॉलेज में हमारे पास एक क्वाड है। क्या यह वैसा ही है जैसा बाइबल कहती है? तो यह है। हाँ, मैं मजाक कर रहा हूं। इन अन्य लोगों के साथ भी यही होता है। इसलिए अब बिन्यामीन का गोत्र फिर से गठित हो गया है। अब आप कहते हैं कि आप खून खराबे वाली कहानी क्यों सुनाते हैं, यह तो मेरी माँ कहेगी। तुम्हें वो कहानियां बताने की जरूरत नहीं है टे। बाइबल में ये बेहद हास्यास्पद कहानियां हैं जिन्हें आपको कॉलेज के छात्रों को नहीं बताना चाहिए। हालांकि मेरा सवाल खुद से है कि क्या उपपत्नी के साथ बलात्कार किया गया और हत्या कर दी गई, बांटो और जीतो, इस तरह उन्होंने बिन्यामीन के लिए पत्नियां प्राप्त की, याबेश गिलियड ने पत्नियां प्रदान की। वैसे यह याबेश, मेरे द्वारा इसका उल्लेख करने का कारण यह है कि यह बाद में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। वहां एक लड़का है जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वह याबेश गिलियड से था, फिर शिलो नर्तक, और यहीं से वे बिन्यामीनियों के लिए इन पत्नियों के साथ आए। अब बाइबल में यह कहानी क्यों शामिल है और बाइबल हमें यह नहीं बताती है कि ऐसा क्यों है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहां बेंजामिनियों की कहानी के साथ एक सुझाव मिला है। न्यायाधीशों की पुस्तक क्या स्थापित कर रही है? इसराइल में क्या नहीं है? न्यायियों के समय में इसराइल में कोई राजा नहीं रहता और हर कोई वही करता है जो उसकी दृष्टि में ठीक है। इसराइल का पहला राजा कौन बनने जा रहा है? शाऊल। शाऊल किस जनजाति से है? बेंजामिन। मेरा मानना है कि यह कहानी राजा शाऊल के शासनकाल की स्थापना कर रही है। मेरा मानना है कि न्यायाधीश की पुस्तक में यह कहानी बिन्यामीन के गोत्र को स्थापित करने के लिए रखी गई है। वैसे जब वे शाऊल को राजा बनाने जाते हैं तो क्या आपको याद है कि शाऊल ने क्या कहा था? वह कहते हैं, मैं सबसे छोटी जनजाति से हूं, क्या हर कोई सबसे निचली जनजाति से है? हाँ, तो शाऊल बिन्यामीन के गोत्र से होगा, इसलिए मुझे लगता है कि यह कहानी राजा शाऊल की पृष्ठभूमि के रूप में रखी गई है। दया,